एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातस्मरणीयाः श्री केशव भगवत चरणारविंद मकरंद स्थिता भगवतो भक्ति, तदनु केशव सेवा परायण अंतकरणाः साधीयांश साधवः परोपकार निरताः देशे विदेशे च भक्ति प्रचारार्थम येषां लीलावतारः एवं भूताः भक्त वेदांत नारायण स्वामिनः। तदनु हरि कीर्तन तत्पराः अत्रत्याः साधीयांशः साधवः, तदनु वरीयांशो अत्र विद्यमानाः विद्वांसः भगवत कथानुरागिणो संस्कृत सेवानुराग जुषः नागरिकाः मातरो भगिन्यश्च। स्वामी पादानां श्री भक्त वेदांत नारायण महाभागानां आज्ञया संस्कृत भाषायामेव किंचित प्रस्तुयते। इयं संस्कृत भाषा देववाणी, नेयं मानवानां वाणी, अत्र तु देवा एव अस्यां भाषायां स्वाभिप्रायं निवेदयन्ति स्म। ब्राह्मणा अपि भूदेवाः इति पदेन कीर्त्यन्ते, तस्मात् वेदान्तो द्विविधाः, ज्ञानवेदान्तं भक्तवेदान्तं च। तत्र ज्ञानवेदान्ते भगवान् किमपि न भक्षयति, तदुक्तम् उपनिषत्सु कि द्वासु पर्णा सयुजा सखाय समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरेकः पिप्पलं स्वादवत्ति अनश्नन् अन्यः, अन्यः परमात्मा अनश्नन्नेव प्रकाशयति, तस्मात् अशनं न करोति इति ज्ञानवेदान्ते निरूपितम्। परञ्च एवं नारायण साधीय साधवस्तु भक्तवेदान्तानुयायिनः, तर्हि भक्तवेदान्ते भगवान् भक्तसमर्पितं भोजनं कुर्वन्ति न वेति जिज्ञासायां, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यपरतम् अश्नामि। तत्र गीतायाम् अश्नामि इति वाक्यतः भगवान् भक्तसमर्पितं सर्वमेव अशनाति इत्यत्र नात्र मनागपि संशयः। तर्हि ज्ञानवेदान्ते किमपि भवतु नाम, उपनिषदः किमपि कथयन्तु नाम, परन्तु अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि उपनिषद्दृशाम् इति दशमस्कन्धे वाक्यात् एवं खलु अनुमीयते ज्ञायते च कि ये निरन्तरम् उपनिषदः पश्यन्ति तैरपि भगवतो माहात्म्यं भूरि न ज्ञातम्। अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि उपनिषद्दृशाम्, तस्मात् मथुर मधुपुरीयां या च मधुपुरी श्रीमद्वल्लभाचार्यै भ्रमरगीते अन्तिमश्लोके मधुपुरीयाम् इत्यस्य अर्थः पुष्टपुरीयाम् इति भणितम्। तस्मादियं पुष्टपुरी चैतन्यमहाप्रभोरपि एषा आज्ञा कि मथुरायां निवासः कर्तव्यः यदि भक्तवर्धने इच्छा स्यात् तदा। यदि भक्तिं विवर्धय शवो भवन्तः तरी अवश्यमेव कृष्ण जन्मभूमौ मथुरायां किंचित समय पर्यन्तं निवासः कर्तव्यः। अत्र मथुरायां निवासेन भक्ति अनुदिनं वर्धते। तस्मात् एते वेदांत नारायणाः ज्ञान वेदांतं परिहाय भक्त वेदांतानुसरणं कुर्वन्तः अन्यानपि बोधयन्तः कृष्ण सेवा प्रचार कृष्ण सेवां प्रचारयन्तः न केवलम् अस्मिन् भारते देशे अपितु विदेशेपि गत्वा भक्त प्रचारं कुर्वन्तः स्वयं श्री केशव सेवां कुर्वन्ति कारयन्ति च। अतः एतेषां महानुभावानाम् आज्ञाम् अनुसन्धाय मया किञ्चित् फलितं यदि विशेषतः आज्ञा स्यात् तर्हि रात्र द्वादशवादनपर्यन्तमपि संस्कृतभाषायां भणितुमहं गुरुकृपया शक्नोमि। तस्मात् संस्कृतभाषां भक्तवेदान्तनारायणपादांश्च प्रणम्य हिन्दीभाषायां किञ्चित् अनुद्यते। महाराज ये भक्ति का प्रसंग चला तो भक्ति के प्रसंग में 81 प्रकार की सगुणा भक्ति है। ये श्रवणादि 9 भक्ति और सत्व रज तम इनका 3 गुणा करने से 9 और 9 का 9 गुणा करने से 81 होता है। ये 81 प्रकार की सगुणा भक्ति और निर्गुणा भक्ति 3 प्रकार की, प्रेम आसक्ति और व्यसन। ये निरूपण शास्त्र सम्मत है, परंतु भक्ति के अनेक भेद होने के कारण हमारे कपिल जी ने अपनी माता देवहूति को भक्ति योगो बहुविधा मार्गैर भामिन भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। विशेष लंबायमान व्याख्या न करके सूक्ष्म में तामस भक्ति 3 प्रकार की, राजस भक्ति 3 प्रकार की और सात्विक भक्ति 3 प्रकार की, इस प्रकार 9 भक्तियों का निरूपण किया और 10वीं भक्ति को निर्गुण भक्ति के रूप में स्थापित किया। केवल मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्न दृग्भावम मई कुर्यात् सतामशः। जो लोग किसी की हिंसा के लिए भी भगवान की भक्ति किया करते हैं कि भगवान की भक्ति का बल लेकर हम अपने शत्रु की हिंसा करें, यह भी एक तामसी भक्ति का प्रकार भागवत ने बताया। और दूसरा प्रकार है दंभम, दंभी भवति विवेकी, जो अपना अपनी सत्यता को छिपाकर लोगों में पाखंड और दम्भ का प्रचार करने के लिए भी भक्ति किया करते हैं, यह भी तामसी भक्ति। और मात्सर्यम, मत्सरस्य भाव मात्सर्यम, मत्तः अयम अग्रे सरति इति ईर्ष्या यो भावः स मात्सर्य भावः, जिसके लिए भागवत के प्रारंभ में बताया निर्मत्सराणाम सताम संतोपि समत्सरा भवन्ति तेषां परे हानायो अयम निर्मत्सर पदम सताम विशेषणत्वेन दत्तम इतर व्यावर्तकत्वम ही विशेषणत्वम भवति। तो ये 3 प्रकार की हिंसा के लिए, दंभ के लिए और मात्सर्य के लिए जो भक्ति होती है वो तामस भक्ति 3 प्रकार की। आगे चलें, आगे कहा विषयान अभिसंधाय, विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्य मेव वा अर्चादौ अर्चये दियो माम पृथक भावः स राजसः। राजसी भक्ति के 3 प्रकार हैं। जो विषय सुख की कामना से भक्ति करता है वह भी राजसी भक्ति है, और अपने यश के बढ़ाने के लिए भक्ति करता है वह भी राजस भक्ति है, अपने ऐश्वर्य के बढ़ाने के लिए भी जो भक्ति करता है वह राजसी भक्ति है। यह 3 और 3 6 भक्तियों का निरूपण हुआ। आइए अब सात्विक में, तो कहते हैं कर्म निरहार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेद यष्टव्यमिति पृथक भाव स सात्विक। सात्विक भक्ति भी तीन प्रकार की होती है। एक तो हमारे किए हुए पाप कर्मों की निवृत्ति के लिए हम भक्ति करते हैं। कर्म निरहार मुद्दिश्य कर्मणाम निरहार नाशः, उस नाश का उद्देश्य करके जो भक्ति करता है वो सात्विक भक्ति है। परस्मिन् वा तदर्पणम इदम सर्वम क्रियमाणं कर्म भगवते समर्प्यते नारायणायेत समर्पयेत तत्। यह परस्मिन् भगवान में समर्पण करना ये भी सात्विक भक्ति है। और यजेद यष्टव्यमिति भगवान की सेवा करना हमारा नित्य कर्तव्य है ऐसा समझ के जो सेवा करता है वह भी सात्विक भक्ति है। तो तीन तामस, तीन राजस और तीन सात्विक नवधा भक्ति का यहाँ कपिल जी ने निरूपण किया। समय के कारण विशेष विस्तार नहीं कर रहा हूँ। आइए अब अंतिम में आ जाइए। मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम भसोम्बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहरितम अहैतुकी अप्रत्यहता या भक्ति पुरुषोत्तमी। अभी प्राचीन वक्ताओं से सुना मैंने प्राचीन के मातृभक्ति और पितृभक्ति गुरु भक्ति ये भक्ति नहीं कही जाती। भक्ति तो या भक्ति पुरुषोत्तमे जो श्री कृष्ण के चरणारविंद में की गई भक्ति है उसी को भक्ति कहते हैं। दूसरी भक्ति नहीं हो सकती, नहीं तो पुरुषोत्तम पदम व्यर्थम स्यात्। इस प्रकार वर्णन किया मेरे गुण श्रवण मात्र से मई सर्व गुहाशय सब प्राणियों के हृदय के गुहा में शयन करने वाला जो मैं हूँ उसमें मन की जो गति है वो अविच्छिन्ना बीच में लौकिक प्रतिबंधों से वो विच्छिन्न न हो ऐसी जो अविच्छिन्न गति है यथा गंगाम भसोम बुधौ जैसे गंगा का प्रवाह अनेक पर्वतों को ऊपर होता हुआ सागर में प्रवेश करता है उस प्रकार मन रूपी गंगा का यह प्रवाह श्री केशव भगवान के चरण कमलों में ही विश्राम लेता है उसे निर्गुण भक्ति कही जाती है। सज्जनों आइए अब धर्म के तीन अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दो अर्थ तो सूत जी ने कहे पर तीसरा अर्थ व्यास जी ने बताया वो क्या है। धर्म का फल अर्थ है, धर्म से पैसा मिलता है तो उस पैसे का तो सूत जी ने निषेध कर दिया वो तो अधम फल है। और मध्यम फल क्या है, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। कहा धर्म का फल है मोक्ष, अर्थ फल नहीं है। अर्थ फल है तो सही पर निकृष्ट फल है। तो धर्म का प्रथम फल अर्थ, मध्यम फल अपवर्ग और उत्तम फल जिसका अभी महाराज जी वर्णन कर रहे थे सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुकी अप्रत्यहता यया आत्मा संप्रसीदति। यदि आत्मा को प्रसन्न करना है तो भगवान की भक्ति करो। इसी बात को प्रह्लाद जी ने कहा नई बात मन प्रभरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषो वृणीते यदि जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। यद्यपि भगवान अपने लाभ से परिपूर्ण हैं वो मानव से किसी प्रकार की इच्छा नहीं चाहते परंतु तथापि यदि हम अपने मुखरूपी बिंब को अपने दर्पण में सुंदर देखना चाहते हैं अपने प्रतिबिंब को सुंदर देखना चाहते हैं तो हमें बिंब को सजाना पड़ता है। उसी प्रकार जो भगवान को सम्मान देता है उसको जगत सम्मान देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी। इसलिए परम धर्म जो धर्म प्रोज्जित कैतवो का परम धर्म है वो भगवान श्री केशव भगवान के चरणारविंद में अप्रत्यहता और अहितु की भक्ति को ही कहा जाता है। यह भक्ति अशुद्धता के रूप में तो हमने यहाँ कपिल गीता में अनेक नवधा भक्ति बताई पर वास्तविक में ये भक्ति है प्रेम लक्षणा भक्ति। जिसके प्रेम प्रकाश के लिए नारद जी स्वयं सनकादिकों के शरण में आते हुए कहते हैं, प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। प्रेम ये मणि है और ज्ञान दीपक है। ज्ञान दीपक तेल या घी से भरा भी होगा पर आंधी की लपट में आकर वो बुझ सकता है, पर मणि का प्रकाश कभी आंधी के प्रभाव से बुझता नहीं है। इसलिए प्रेम लक्षणा भक्ति मणि है और उसका प्रकाश जब हृदय में होता है तो जगत का कल्याण करने के लिए भक्त वेदांत जैसे महान भाव इस जगत में आते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। और इसी संदर्भ में मैं आपसे एक बात कहूं, जगह जगह कैवल्य शब्द आता है और उसे वो शंकर मतानुयायी कैवल्य माने मोक्ष पद का प्रयोग करते हैं, पर हमारे वैष्णव सिद्धांत में केवलश्च केवलाच केवलौ केवलयो ऐक्यम कैवल्य केवलः श्री केशव कृष्णो वा केवला श्रीमती राधा, ये दोनों केवल हैं, इनके बराबर किसी का बल नहीं है। ये दोनों केवल कृष्ण और केवल राधा, तयो हो केवल योर कृष्ण राधा कृष्ण यो हो रासे महारासे यद ऐक्यम तदेव कैवल्यम तदेव श्रीमद्भागवतस्य फलम कैवल्यैक प्रयोजनम इति वाक्यात्। अतः कृष्ण और राधा ये दो चीज नहीं है। उपनिषद कहता है तदात्मानं द्वेधा अपातयत पतिश्च पत्नी च भवताम। भगवान ने अपनी आत्मा के दो भाग किए, आधा भाग राधा हो गई और आधा भाग कृष्ण हो गया। प्रथम भी हम यहाँ आकर ये बात बता चुके हैं, यहाँ प्रत्येक भागवत कृष्ण राधा मय है, प्रत्येक अध्याय प्रत्येक स्कंध और प्रत्येक श्लोक और श्लोक के पद अक्षर समूह को पद कहते हैं, पद समूह को वाक्य या श्लोक कहते हैं, श्लोक समूह को अध्याय कहते हैं, अध्याय समूह को प्रकरण कहते हैं और प्रकरण समूह को स्कंध कहते हैं और स्कंध समूह को भागवत शास्त्र कहा जाता है। तो हे सज्जनों, एक भक्ति मर्यादा भक्ति होती है जो साधनों से साध्य होती है, जैसे दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमयी श्रेयोभिर विविधैश्चान्यै कृष्णे भक्तिर साध्यते। जो साधन से प्राप्त होती है वह मर्यादा भक्ति है और प्रेम लक्षणा भक्ति उसे कहते हैं जो केवल भगवत कृपा पर ही आधारित हो। भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं, अनुग्रह पुष्ट मार्गे नियामक इति स्थिति, भगवान जिस पर जिसके हृदय में अनुग्रह का बीज बो देते हैं उसी को प्रेम लक्षणा भक्ति आती है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति तो श्री राधा जी की भगवान के चरणों में है और किसी की नहीं हो सकती, या ब्रज गोपिकाओं की। बाल्वाचार्य लिखते हैं, शुद्धा प्रेमणा अति दुर्लभा। प्रेम लक्षणा भक्ति वाली या तो ब्रखभानु नंदिनी किशोरी जी हैं या पर उनकी चरण सेवा निरत ब्रज गोपांगनाएं हैं, उनकी भक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार वल्लभाचार्य महाराज से पूछा, महाराज आपका जो सिद्धांत है वो क्या है थोड़े में बताइए। तो गोसाई जी ने बताया, श्री वल्लभाचार्य मते फलम तत्प्राकट्यम। भगवान मूर्ति में से बाहर निकलकर कुछ मांगने लगे तब समझना हमारी भक्ति सफल हुई, अन्यथा तब तक वह फल रूपा भक्ति नहीं है। अत्र व्यभिचार हेतु प्रेमैव, और ऐसा भगवान का आविर्भाव प्रेम से ही होता है। तो प्रेम कब होता है? तो तस्मिन नवधोक्त भक्ति, जब नवधा भक्ति निष्काम की जाती है तो प्रेम होता है और प्रेम से भगवान प्रकट होता है। तत्रोपयोगो खिल साधना नाम, जितने भी हम पुण्य करें वो ददु दानम द्विजातिभ्या कृष्णे नो भक्ति रस्तुति। यह महाराज जब देव यात्रा में सब ब्रजवासी गए, उन्होंने दान दिया, लोगों ने पूछा आप दान क्यों दे रहे हैं, तो कहे देह दानम द्विजातेभ्यो कृष्णे जो भक्त रस्त्वति, हमारी कृष्ण में भक्ति हो इसके लिए जो महाराज साधन साध्या भक्ति की बात है, और जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो तो भगवत कृपाई के साध्या, जिनके हृदय रूपी खेत में भगवान कृपा का बीज बो देता है वही प्रेम लक्षणा भक्ति के अधिकारी होते हैं। श्री स्वामिनी जी जिन पर कृपा करे, श्री राधा रानी जिस पर कृपा करे, लोग कहते हैं राधा का नाम नहीं है, आचार्य वल्लभ कहते हैं नमो नमस्ते स्तुर्सभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मोहको योग नाम नरस्त साम्याति सयेन राधसा। यह राधिका को स्पष्ट सुखदेव जी प्रणाम कर रहे हैं, जिससे कोई बराबर नहीं, जिससे कोई अधिक नहीं, ऐसी जो राधसा राधा शक्ति है वह क्या कर रही है कि मारा स्वधामनि ब्रह्मण रमशते नमः। भगवान के मंदिर जितने हैं वो अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर ब्रह्म अपने मंदिर में रमशते राधिका के साथ नित्य विहार करने वाले उस केशव भगवान को हम प्रणाम कहते हैं। बस यही भाव न केवल आचार्य वल्लभ का है, हमारे चैतन्य महाप्रभु के भी यही सिद्धांत मिलते हैं। मैं इतना कहकर अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु के आशय को हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हुए कहते हैं कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदं तत्रादरो न परः। चक्रवर्ती जी आज्ञा करते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, जो भगवान नंद का पुत्र है वही हमारी संप्रदाय में आराध्य आराधन करने योग्य है। आराधनीयो ब्रजेशस्य नंदस्य तनय एव। वल्लभाचार्य भी कहते हैं सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः, और गोपी गीत में भी कहा जयति तेधिकं जन्मना ब्रज ते जन्मना ब्रज वैकुंठात अपि अधिकम जयति। ये सब गोकुल में भगवान नंद बाबा के यहाँ भगवान के जन्म का समर्थन करते हैं। हमारे श्री विश्वनाथ जी भी कहते हैं वही ब्रजेश पुत्र हमारे चैतन्य महाप्रभु के सेवनी और आराधनीय भगवान हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, वो भगवान जो लीला भूमि है वो वृंदावन भूमि है। धन्येयम् अवनी ततोपि मथुरा तत्रापि वृंदावनम्, इस प्रकार वृंदावन में अधिक प्रेम बताया। और रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, उनकी जो रमणीय भक्ति है जो ब्रजवधुओं ने अपनी कल्पना से प्रवृत्त कराई, जिसको हमारे पंडित जी कह रहे थे कि भक्त प्रवर्तिता दृष्टिया, भक्ति के प्रवर्तक हमारी ब्रज गोपियाँ हैं, ये दूसरा कोई आचार्य नहीं है, भक्ति मार्ग की आचार्य ब्रज की समस्त गोपिका हैं। इसलिए आचार्य वल्लभ कहते हैं गोपिका गौरवः, श्री गोपी ही इस भक्ति मार्ग की गुरु हैं, उन्हीं ने ये भक्ति मार्ग प्रवृत्त कराया है। तो रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, उन्होंने जो भक्ति की है वही प्रेम लक्षणा भक्ति है, और वो भक्ति हमारे उद्धव को भी प्राप्त हो, इसलिए अनंत भगवान ने उद्धव जी को ब्रज में गोपियों के चरण की भक्ति प्राप्त करने को भेजा। और भी ज्ञान की अपरिपक्वता और भक्ति की परिपक्वता को बताने के लिए बृहस्पति के शिष्य उद्धव को भेजा। आचार्य वल्लभ अंत में कहते हैं अनंतेन उद्धवस्य ब्रजे पेशणम अनंतान्येव प्रयोजनानि, अनंत प्रयोजन से उद्धव को वहाँ भेजा। और उद्धव हमारे सूरदास जी कहते हैं उद्धव कुछ ज्ञान से टेढ़ा था, पर गोपियों का दर्शन करके वो सूधा हो गया। उद्धव सूधो भयो, महाराज भक्ति सीधा बना देती है और ज्ञान थोड़ा टेढ़ा बना देती है। इसलिए भक्ति अनर्थ का निवृत्ति करती है, ज्ञान नहीं करती। इसी प्रकार अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वां चक्रे सात्वत संहिताम। ये भक्ति और भागवत दो चीज नहीं है। जो भागवत है वही भक्ति है, और भागवत भक्ति है वही किशोरी जी है, और किशोरी जी है वही भगवान कृष्ण है। इनमें कभी भेदभाव करना नहीं, यही सच्चा भक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार भागवतम प्रमाण ममलम कहते हैं श्रीमद् भागवती हमारे लिए परम प्रमाण है, और प्रेमा पुमर्थो महान कृष्ण और राधा के चरणार बिंद में जो उज्ज्वल शुद्ध प्रेम है वही हमारे यहाँ सच्चा पुरुषार्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम, श्री चैतन्य महाप्रभु का ठाकुर चक्रवर्ती कहते हैं इतना ही मत है। तत्रादरो न परह न अस्माकं गौड़ीय संप्रदायानुगतानां सर्वेषामेव साधूनां भक्तानां इदमेव मतम, यही हमारा मत है। और चैतन्य महाप्रभु के मत में आदर करना ही हमारा परम कर्तव्य है। इन वैष्णव आचार्यों के ऐक्य मत को बताते हुए कृष्ण में प्रेम, राधा के चरणों में प्रेम, ब्रज गोपियों के चरणों में प्रेम करना ही मानव जन्म की सार्थकता है और मानव जन्म की सफलता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हुआ, हमारे भक्त वेदांत नारायण जी को, हम मथुरा के ब्रजवासी हैं, हम यमुना जी के किनारे पर प्रतिदिन कथा कहा करते हैं, हम 5 वर्ष से रामघाट पर यमुना तट पर निष्प्रहता से कथा करते हैं, इसलिए हमें अधिकार है। हम यमुना जी के युगल चरणों में प्रार्थना करते हुए हम हृदय से चाहते हैं कि हमारे भक्त वेदांत जी स्वस्थ हों और चिरायु दीर्घायु हों और भक्ति का प्रचार करने के लिए भारत में अमर रूप धारण करें। इन शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ।